ओम शांति। मुरली सभी लोग सुनते हैं, है ना? लेकिन क्या अंतर होता है सबके सुनने में? कुछ लोगों को बहुत सारी पॉइंट्स याद होती है, कुछ लोगों को सोचना पड़ता है क्या बताया बाबा ने, है? और किसी को बहुत सारी पॉइंट्स याद भी होती है लेकिन धारणा में उसमें भी अंतर हो जाता है, है ना? तो इसीलिए क्या होना चाहिए इसमें? इंटरेस्ट, है ना? इसका महत्व, मुरली क्या है, इसके यदि महत्व को हम समझें तो हमारा अटेंशन पूरा बना रहेगा। क्योंकि जानकी दादी कई बार कहती थी कि यदि कोई 5 बार मुरली पढ़ता है अच्छी तरह से, 5 बार मुरली पढ़ता अच्छी तरह से तो क्या होगा, दादी ने कहा था वो अष्टरतन में आने के उसके चांसेस हो सकते हैं। इतना महत्व है। अगर 5 बार, ऐसे नहीं कल सत्यनारायण की कथा जैसा पढ़ दिया, नहीं, पढ़ते जा रहे हैं उसको समझते जा रहे हैं। तो अगर 5 बार सोचिए, हम 1 बार सुनते हैं तो क्या होता है, एक बार मुरली सुनते हैं हम पहले पेज पे ही रह जाते हैं, मुरली कहीं और आगे चली गई, है ना? तो इसलिए जब हम मुरली सुनते हैं तो इसके महत्व को समझें। और लगभग ये जो साकार मुरली है हर 5 साल में रिवाइज होती है लगभग। लेकिन जानकी दादी ही कई बार बोलती थी कि ये तो लग रहा है कि मैं पहली बार सुन रही हूँ, कई पॉइंट्स ऐसे। सोचिए कि दादियाँ इतना स्टडी करने वाली, इतना सम्मुख सुनने वाली, उनसे भी कुछ न कुछ पॉइंट मिस हो जाती थी, तो हम लोगों से क्या होता होगा। तो इतना अटेंशन रहे मुरली पर। लेकिन मुरली सुने कैसे ये भी हमें मालूम होना चाहिए, केवल पॉइंट नहीं। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे अभी केवल पॉइंट नहीं लिखो, अभी इतना समय नहीं है कि एक बार आप पॉइंट लिखो फिर उसके बाद अभ्यास करो, नहीं। बाबा कहते हैं साथ ही साथ करते जाओ, फिर शायद ये पॉइंट आपको ना मिले, आप आगे कहीं और चले जाएंगे, कोई और पॉइंट्स आ जाएगी। तो इसलिए जो भी पॉइंट्स आ रही है उसी समय हमें उसका अनुभव करना है, 1 सेकंड के लिए ही सही करना जरूर है, है ना? जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तुम कहां हो, संगम युग पर। तो संगम युग पर हैं तो संगम युग हमें दिखना चाहिए ना, दिखना चाहिए। हम केवल संगम युग कहेंगे ना, बस संगम युग एक शब्द हो गया, एक वर्ड हो गया, लेकिन संगम युग देखना है ना हमें। संगम युग कब है? संगम युग कब कहेंगे? संगम युग, संगम युग पर क्या है जो और युगों में नहीं है? पहले संगम युग के महत्व को समझना ना। परमात्मा है और संगम युग ही है जिसमें हम क्या समझते हैं कि मैं आत्मा हूं, है ना? भले हरेक को मालूम है कि आत्मा होती है, आत्मा अजर अमर है, द्वापर से ही ये पता चल जाता लोगों को, अविनाशी है, ये भी मालूम है, लेकिन मैं ही आत्मा हूं इसका अभ्यास किसी के पास नहीं है। तो ये बाबा ही आकर के बताते हैं कि बच्चे आप क्या हो, आत्मा। और संगम युग पर ही जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं, है ना? और जो महावाक्य उच्चारित करते हैं तब से ही हम कहेंगे संगम युग, है ना? अगर ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ना आए तो कहेंगे ब्रह्मा बाबा। जब दोनों बाबा जुड़ते हैं, दोनों बाबा एक साथ होते हैं, फिर संगम युग है ना। तो इतना हम इसके महत्व को समझें कि ये वो युग है जब स्वयं भगवान उपस्थित है। तो संगम युग केवल शब्द नहीं, संगम युग को देखें पूरी तरह। संगम युग कैसे है? इसीलिए जब हम बाबा भी कहते हैं तो बाबा केवल नहीं, बाबा के साथ उसकी स्थिति दिखाई दे, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि भले आप बाबा सामने आए हुए हैं, लेकिन फिर भी कहां याद करो बाबा को? परम धाम में। क्यों? जैसे मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए आगे, तो अगर हम देखेंगे कहेंगे तो व्यक्ति है ना, इतना ध्यान नहीं देंगे। अगर किसी को पता नहीं है तो हम कहेंगे व्यक्ति है, लेकिन यदि पता चले कि ये प्राइम मिनिस्टर है तो हमारा व्यवहार कैसा हो जाएगा? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हम बाबा शब्द कहते हैं ना, तो बाबा के साथ ही हमें बाबा दिखाई दे, एक सेकंड के लिए ही सही, हम उसी समय परम धाम को इमर्ज करें कि परम धाम के अंदर बाबा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे दिखाई दे तो कहेंगे कि संगम युग हमें स्मृति में। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अभी तुम संगम युग पर हो, इसलिए जहां हमें एक तो बाबा का भी परिचय, हम बाबा को देखते हैं, सतयुग को भी यहां देखते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आपको क्या याद नहीं आना चाहिए, कलयुगी दुनिया और पुरानी दुनिया। क्यों नहीं याद आनी चाहिए कलयुगी दुनिया और पुरानी दुनिया? क्यों याद नहीं आनी चाहिए? अगर याद आती है कलयुगी दुनिया पुरानी दुनिया तो क्या नुकसान है जी? वही याद आएगी। और इसके अतिरिक्त भी देखें तो कलयुगी दुनिया में क्या है? कलयुगी दुनिया को अगर देखें ध्यान से, है ना, तो कलयुगी दुनिया में आप संबंधों को देखिए, परिवार में ही चले जाइए, बाहर से आप देखें ना तो परिवार आपको बहुत हंसते खेलते महसूस होंगे, बहुत अच्छा परिवार चल रहा है, बाहर से आपको दिखता है, बाहर से संबंध बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जैसे इस समय वर्तमान में है ना, धरती बाहर से बहुत अच्छी दिख रही है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अंदर से देखें धरती को तो क्या है, सभी प्लेट्स खिसक रही है ना, और आग ज्वाला अंदर धधक रही है। इसलिए जो प्लेट्स खिसक रही हैं वो पता नहीं कब धरती जो है, तो अभी आपने भी देखा होगा कि 3-4 दिन के अंदर कितनी बार अर्थक्वेक हुआ, 2 बार, है ना। तो ऐसे ही बाहर से संबंध बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा खुरे दे ना तो पता चलेगा कि हर संबंधों में ना जैसे ज्वालामुखी धधक रही है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा लेकिन अंदर से बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है, हर व्यक्ति फील कर रहा है लेकिन वो व्यक्त भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे संबंध हैं, ऐसे तनाव के संबंध हैं, इतना पाप है जो दिखाई नहीं दे रहा ना। तो हम देख लें यदि कि कितना पाप समाया हुआ है इस दुनिया में, कितनी पतित दुनिया है, कितना स्वार्थ है, कितना अटैचमेंट है, सब कुछ अगर देखें ना, आप किसी को देखो बाहर से बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है और आपको पता चले अंदर से इनके इनका मेरे लिए ये भावना है ना, इसीलिए जब दादी थी ना, बड़ी दादी, दादी जब शरीर छोड़कर चली गई वतन में ना, तो बाबा ने सब दिखाया दादी को। तो दिखाया, दादी चाह रही थी एक बार आना यहां, तो बाबा ने कहा जाओ बच्ची एक बार। लेकिन जब दादी ने देखा ना कि कैसा है, क्या क्या होता है यहां संसार में, दादी को वैराग्य आ गया, अरे हम क्या सोचते थे और क्या है ना। तो इसी प्रकार अगर हम देख लेना इस दुनिया की हालत अंदर से, तो कभी भूल के भी याद ना आए। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया, कलयुगी दुनिया का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे आप 108 दुखों की लिस्ट निकालने चाहिए कि कलयुग में क्या क्या दुख हैं, क्योंकि अगर लिस्ट निकालेंगे दुख पता होगा ना, तो ही वैराग्य होगा, है ना। फिर बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म अगर करने हैं या अपने कर्मों को सुधारना है तो क्या करो, सच्चा सच्चा बाबा से सच्चे रहो, तो क्या होता है इससे। इसीलिए बाबा ने कहा है कि अंत घड़ी में ना कई तरह के चांसेज हैं आपको पाप खत्म करने के, योग बल से भी है, सजाएं खा करके भी है, और एक सजा और भी है, प्रायश्चित। प्रायश्चित आप देखेंगे बहुत पहले के जमाने में कोई किसी के हाथों से ना, किसी गाय की या किसी का वो हो जाता था ना, मौत हो गई, तो लोग क्या करते थे मालूम है, लोग प्रायश्चित करते थे, घर छोड़ के चले जाते थे, पता नहीं कितने दिनों तक, मुझे भी याद नहीं है, 20 दिन 21 दिन घर से बाहर रहते थे और भिक्षा मांग के खाते थे, गांव में जाते भी नहीं थे, बाहर ही सोते थे, बाहर रहते थे। तो अपने को वो समझते थे कि हमसे इतनी बड़ी भूल हुई है, है ना। तो ये जो प्रायश्चित करते हैं ना, इससे भी पाप खत्म होते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जब हम भी दिल से बाबा को बताते हैं ना, इसको फील करके, ऐसा नहीं कि गलती हुई हमने बता दिया, नहीं, अंदर से उसको रियलाइज कर रहे हैं, अंदर से तड़प है कि ये हमसे भूल कैसे हुई। तो ये जो अंदर से तड़पन है, अंदर से जो रियलाइज हो रहा है ना, प्रायश्चित कर रहे हैं। तो बाबा ने मुरली में कहा है कि यदि आप प्रायश्चित भी करते हैं ना, अंदर से कोई गलती हुई है उसको फील करते हैं दिल से, तो बाबा ने कहा है इस प्रायश्चित करने से भी ना आपका बहुत सारा पाप खत्म होता है। तो इसीलिए प्रायश्चित करना, फील करना कि हमसे ये भूल हो गई, और उसे बाबा को बताना, बाबा नहीं है तो साकार में नहीं है तो बाबा ने क्या बताया, बाबा ने एक अव्यक्त वाणी बताया था कि बच्चे बाबा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता ना साकार में, इसीलिए बाबा ने निमित्त टीचर्स रखे आपको सेंटर पर। तो हम उनको चार्ट दें अपना, हम फील करें कि ये बाबा के प्रतिनिधि हैं। तो जब हम जितना जल्दी हम अपनी कमी को बताएंगे ना, उतना जल्दी हमको फायदा है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं गलत रास्ते पर चले गए, आपको जाना है लेफ्ट साइड और आप चले जा रहे हैं सीधे, और यहां से टर्न करना है आपको, तो आप जितना जल्दी पूछ लेंगे ना किसी से कि यहां का रास्ता कहां से जाता है, अब थोड़ा आगे गए पता चल गया तो आप लौट के टर्न हो गए, लेकिन अगर आप बहुत दूर आगे निकल गए और कोई बताए तो आप लौट के आएंगे, कितना समय गया, कितना टाइम गया आपका ना, कितनी एनर्जी गई। तो इसीलिए सच्चाई है ना, सतयुग की पहली निशानी है सच्चाई। जो जितना सच्चे होंगे ना वही सतयुग में आएंगे। अगर सच्चाई नहीं है तो सतयुग की पहली निशानी है सच्चाई। लेकिन सच बोलने के लिए, सच पर चलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए ना, खुल के अपनी बात बताना। क्योंकि अगर हम सच बताएंगे तो क्या भी है होगा। लेकिन नहीं, हमारे कॉन्शियस में है, कहा किसने है, बाबा ने कहा ना। तो यदि आप बाबा के श्रीमत पर चल करके और अपनी सच्ची बात बताते हैं तो आपको जो बल मिलेगा ना वो बाबा से मिलेगा। तो इसलिए अगर कोई हमसे गलती हुई है तो हम निमित्त को बताएं और श्रीमत लें, मुरली भी स्टडी करें। मुरली में बाबा ने क्या बताया इसके बारे में ढूंढें, पढ़ें मुरली में, है ना। तो इसीलिए अपने लाइफ में, जीवन में जो परिवर्तन भी लाना है वो बाबा के श्रीमत के आधार से। अगर हम किसी और विधि से अपने लाइफ में परिवर्तन लाते हैं ना तो उसका वर्षा हमको बाबा से नहीं मिलेगा। हम सोचे हम किसी महात्मा से सुनकर, हम कहीं और पढ़कर हम कुछ चेंज ला दें अपने लाइफ में। तो इसीलिए हमें जो भी परिवर्तन लाना है, छोटी छोटी बात का भी परिवर्तन, बाबा के श्रीमत के आधार पर, मुरली के आधार पर। और बाबा ने क्या कहा, शिव बाबा किसके द्वारा समझा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा, है ना। तो बाबा कहाँ है, परम धाम में, परम धाम में देखा आपने। अभी समझा कहाँ से रहे हैं, तो ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं ना बाबा। तो बाबा क्या फील करते हैं, किसका तन है, बाबा नहीं कहते मेरा तन है, मैं सारे यूनिवर्स का मालिक है। अंदर देखिए आप, भगवान का त्याग है ना, उसका भी तो त्याग है ना, कहेंगे हर चीज को त्याग देना, अपनी महिमा को भी त्यागना। जो सारे यूनिवर्स का, सारे ब्रह्मांड का मालिक है वो क्या कहता है, मैं ब्रह्मा बाबा के तन में आया हूं। नहीं तो कह सकता ना, सब तो हमारा है। तो ये भी हमें बाबा से सीखना है, किसी के अधिकार को हम रिगार्ड दें। और बाबा ने क्या बताया, हमें क्या स्मृति हो, हम कैसे स्टूडेंट हैं। तो बाबा ने कहा ना कि दुनिया में भी कोई अगर स्टूडेंट है तो उसे पता है कि हम बैरिस्टर बनने वाले हैं या इंजीनियर बनने वाले हैं, है ना। अभी कोई बच्चे हो मैथमेटिक्स मैथ पढ़ रहे हो और उसी में कोई बच्चा सिकंदर की बात करे तो क्या कहेंगे, भाई ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट थोड़ा ना है। मैथमेटिक्स में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्या होगा। तो बाबा ने कहा कि उनको जब इतनी स्मृति रहती है कि हम इंजीनियर बनने वाले हैं, हम बैरिस्टर बनने वाले हैं, तो ये क्या हमें स्मृति रहती है कि हम देवी देवता बनने वाले हैं। तो जो देवी देवता बनने वाले हैं तो एक बार हमें देखना चाहिए उस स्वरूप में, है ना। आधा मिनट सही बैठें, अपने को देखें देवी के रूप में, देवता के रूप में, देवी देवता कैसे होते हैं, वो कैसे चलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे बोलते हैं। लक्ष्मी नारायण कैसे होते हैं, इसे हम केवल कहने से नहीं होगा, जब इसे हम देखेंगे उसमें खो जाएंगे तो बार बार स्वतः याद आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वरूप बनो, तो अपने को देवी देवता के रूप में देखें। हम देवी देवता बनने वाले हैं, और हम कैसे स्टूडेंट हैं, जिन्हें स्वयं कौन पढ़ाता है, भगवान पढ़ाता है। तो ये भी फील करना, ना ऐसे स्टूडेंट होंगे पूरे कल्प में, ना ऐसा पढ़ाने वाला होगा। तो भाग्य पर नशा हो कि हम कैसे स्टूडेंट हैं जिन्हें हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, और हम क्या बनने जा रहे हैं। और बाबा ने ये भी बताया कि किसी को ऐसा भी ना आए कि हमारे पास ये फॉर्चून तो नहीं है, भाग्य नहीं है कि हम मधुबन में रहें। लेकिन बाबा ने क्या कहा, बच्चे जरूरी नहीं है कि कोई मधुबन में है तो वो याद में एकदम मास्टर हो गया है ना। तो बाबा ने यह भी क्लियर किया कि आप कहीं भी हैं, आपको बाबा को याद करने का चांस है। इसमें कोई बहाना नहीं है कि हम मधुबन में नहीं है ना, मधुबन में होते तो। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बहुत बच्चे तो मधुबन में रह करके भी बुद्धि कहीं और है। तो इसलिए हमें यह भी नहीं सोचना है कि हमें यह चांस नहीं है, हर एक को चांस है। तो हम जितना चाहे इतना बाबा को याद कर सकते हैं। और इसीलिए बाबा ने कहा कि आप जितना बाबा को याद करेंगे उतने क्या बनेंगे, मीठे बनेंगे, है ना। जितना देही अभिमानी स्थिति होगी उतने हम मीठे बनेंगे। तो इतना ध्यान हो हमारा, हमें पढ़ाने वाला कौन, हमें क्या पढ़ा रहा है। ऐसे तो लोग कहने को भी कह देते हैं, किसी को बोलो ना आप इससे महाराजा महारानी बनेंगे, सतयुगी देवी देवता, कहेंगे कोई बात नहीं, हमको हम छोटे राजा भी बने तो चलेगा, है ना। लेकिन यदि यही पता चले कि हर एक को कोई मर्सिडीज बांटे कि आपको एक एक मर्सिडीज है ना, और किसी एक को केवल नैनो दे दो तो क्या कहेगा वो, सबको मर्सिडीज और हमको नैनो, क्यों। तो यहां हम इतना कंपेयर करते हैं, और राजा ही जो स्वयं भगवान दे रहा है। और ऐसे भी गिफ्ट कहते हैं, कोई छोटी गिफ्ट भी दे तो उसका बहुत महत्व है, उसका कोई मूल्य नहीं होता गिफ्ट का। और यहां भगवान तो कैसा कैसे गिफ्ट देते हैं सतयुगी देवी देवता का। तो इसको हम देखें, अपने को फील करें, दिन में जब भी टाइम मिले समय मिले इस गिफ्ट को देखें। और सबसे बड़ी गिफ्ट क्या देखें, पहले स्वयं को देखें देवी देवता के रूप में।